समीक्षणाद् विषाददर्शनात् मुक्तिजिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च सधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यान योग के द्वारा आत्मैकत्व साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की निष्ठा प्राप्त हो जाती है। ध्यान योग का स्वरूप, साधन और सिद्धि, ये छठे अध्याय के दसवें श्लोक से ऐसे देखो तो 32 तक हमने विभाजन किया, परंतु वो 36वें श्लोक तक हैं। ध्यान योग का स्वरूप क्या है, उसकी साधना किस प्रकार करें और उससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। तो ध्यान योग का स्वरूप ही समझते हुए हम लोग 14वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। उसमें ध्यान योग का स्वरूप आ रहा है और भी कुछ श्लोक इसमें हैं इसके साथ में। तो किस प्रकार से एकांत स्थान में बैठना है और आसन लगा के बैठो, शरीर को सीधे रख करके, और वहां पर बैठ करके प्रशांत आत्मा, 14वें श्लोक ना, उसका उच्चारण एक बार और कर ले। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्यमचित्तो युक्त आसीतमात् परः। किस प्रकार से योग युक्त हो, युक्तासीत, कैसे समाधि लगाएं, तो तीन चीज यहां पर बताया। मन को संयमित करो, मन संयम्य, इसको एकाग्र करना कहते हैं। एकाग्र करना, किसी एक ध्येय पदार्थ में चित्त को स्थिर करना। और मच्चित्त, फिर चित्त को भी उसमें लगाना। और मत परः, अर्थात जो आपका ध्येय पदार्थ होगा उसमें तीन चीज आपको लगाना है, आपका मन लगाना है, आपका चित्त को लगाना है और आपकी बुद्धि को लगानी है। तो जैसे कि हम कल कह रहे थे कि हमारे अंतःकरण के तीन पक्ष हैं, एक क्रिया पक्ष, एक भाव पक्ष और एक ज्ञान पक्ष, ना विलिंग, फीलिंग, नोइंग, तीन पक्ष। तो क्रिया पक्ष तो हम झट से समझ ही जाते हैं कि मन को किसी एक जगह पर लगाना, माने उसका चिंतन करना, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, यहां पर आत्मा या ईश्वर, उनका बारंबार और अनवरत रूप से चिंतन करना, ये एक चीज है। दूसरे सब भूल करके उनका चिंतन करो, तो ये मन को लगाना हुआ। इसका कैसे है ये सब हम आएंगे उसमें। फिर चित्त को लगाओ। चित्त को लगाने का अर्थ है हमारा जो रागात्मक पक्ष है, प्रेम, आसक्ति, उसको भी उस ध्येय पदार्थ के साथ जुड़ना है और उससे प्रेम करना है। ये अलग आयाम है चित्त के। कई बार ऐसा होता है, आयाम यानी एस्पेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को आप बहुत पसंद नहीं करते लेकिन करना है, और किसी कारण से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा होगा, तो बड़ा ध्यान देकर के उस काम को हम करते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके साथ हमारी प्रियता बोध भी उसके साथ जुड़ जाए, ना? तो चित्त को लगाना है, रागात्मक वृत्ति को, पक्ष को, भाव को उसके साथ, ध्येय वस्तु के साथ जुड़ना है। ये बड़ी चीज है। और इसी को भाव पक्ष कहा हमने, और मत पर शब्द से भगवान ने कहा मुझे ही सुप्रीम समझना, पर सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। ये जो है आपका विश्वास, भरोसा, निश्चय, ये सब जोड़ना है उसके साथ। ये बुद्धि का पक्ष है, ज्ञान पक्ष है। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, तब स्पष्टता आएगी। पहले चित्त वाला पक्ष ले लेते हैं, मत चित्त। तो हमारा जो राग है, अटैचमेंट, बहुत सारी चीजों में वो बिखरी हुई है, बहुत सारी चीजों में हमारा लगाव है। तो जब वैराग्य की बात की, तो वैराग्य जो है एक प्रक्रिया है जिससे उन उन पदार्थों से जो लगाव है उसको, वहां से आपके लगाव को हटाना, अलगाव करना, ये वैराग्य है। और आत्मा में, परमात्मा में जो आपका, यहां पर जो ध्येय पदार्थ के रूप में भगवान ने छठे अध्याय में कहा ना, वो आत्मा, भगवान का स्वरूप, उसमें लगाना अपने राग वृत्ति को, ये दूसरा है। एक उधर से हटाना और एक इधर से लगाना, ठीक है ना? तो वैराग्य है अलगाव, और अभ्यास से लगाओ, ये दोनों मिलकर के कंप्लीट होगा। संसार से अलगाओ और भगवान से लगाओ, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप देखोगे कि भैया एकाग्र मन को एक जगह पर कैसे लगाएं, तो दो ही उपाय बताएंगे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यहां पर जब अर्जुन ने पूछा मन चंचल है कैसे महाराज स्थिर करें, सम में कैसे लाएं, तो भगवान ने वही दो उपाय बताया ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जगृह्यते। तो ये साधन है। तो अभ्यास क्या है, किसी एक लक्ष्य में अपने आप को लगाना। वैराग्य क्या है, जहां जहां आप लगे हुए हैं उस उसमें से निकालना अपने आप को। तो ये दोनों प्रक्रिया चलनी चाहिए, हाँ, दोनों प्रक्रिया चलानी पड़ती है। तो वैराग्य के लिए कैसे वहां से अलगाव हो, ये विचार संक्षेप में तो हम लोगों ने कर लिया। इस पर अब चूंकि हमारे हाथ में थोड़े से समय है, इसलिए मैं उन बातों को विस्तार से नहीं कह सकता हूं। आवश्यक तो है वैराग्य की बात, लेकिन हम आपके ऊपर भरोसा करके छोड़ते हैं कि आप इसको समझ लेंगे। तो विषय दोष दर्शन, विषय में जहां जहां आपका लगाव है, उस लगाव को परमात्मा में समर्पित करना है और नाम रूप से उसके लगाव को हटाना है। एक बड़ी भारी प्रक्रिया चलती रहती है और कंटिन्यू प्रोसेस है वो। और फिर अलग करके अभ्यास माने परमात्मा में राग को जोड़ना, वो आपको प्यारा लगे। एक उदाहरण ले लो कि राग वृत्ति से किस प्रकार व्यक्ति ध्यान में तन्मय हो जाता है। एक सैनिक वो असम में पोस्टिंग था, नॉर्थ ईस्ट में, छुट्टी लेकर के आया, युवा था, शादी के लिए दिल्ली में शादी किया और उसको जो है दो हफ्ते की छुट्टी मिली थी वहां से। और जब उसका विवाह हो गया, कुछ दिन पत्नी के साथ रहा और फिर जो है विदा करने आई, सब लोग और दूसरे लोग भी आए दिल्ली स्टेशन पर, उनको तो जाना ही है। तो बैठ गए गाड़ी में, उसके रिजर्व जहां पर था, और सब लोगों ने बाय बाय कर दिया। पत्नी ने भी रोते रोते विदा कर दिया। अब वो सज्जन बैठे हुए हैं ऐसे ही, उनका सामान ऐसा वैसा है। तो जब 15-20 मिनट बीत गया तो एक सज्जन और चढ़े थे, उनके साथ में ही थे, जा रहे थे। अब उनको जो है वो बात करने के लिए चाहिए, तो अब देखा कि ये तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं ध्यान लगा करके, किधर जा रही है गाड़ी, क्या है कुछ पता ही नहीं। अब उनको बड़ा प्रेम हो गया पत्नी से, और इनको छोड़ करके जा रहे हैं तो उनका दिल तो वहीं रह गया ना, तो वही सब जो है उनका ध्यान में तो वही चल रहा है महाराज, और बड़े जो है वेदना का अनुभव कर रहे हैं। अब देखो चित्त भी लगा हुआ है, मन भी लगा हुआ है। आमतौर पर जहां हमारा राग होता है तो ध्यान उसमें बड़ी आसानी से लग जाती है। तो ध्यान लगाने के लिए राग का जोड़ना ये एक बड़ा आवश्यक चीज है, और इसको समझना भी आवश्यक है कैसे हम अपने राग को उसके साथ जुड़े। और जब तक इसमें आप सफल नहीं होंगे तो आप बहुत ज्यादा सफलता ध्यान में आशा नहीं रखने का, निश्चित ही है। अब उस सज्जन बहुत देर तक जो है इधर उधर करते रहे, फिर पूछा कि भाई साहब आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है, मोदी जी ने बड़े बड़े वादा किए थे, आपको क्या लग रहा है सब ठीक ठाक हो रहा है? तो एक बार दो बार कुछ बोले नहीं, तीसरे बार जब बोले तो वो थोड़े गर्म हुए, भाड़ में जाए दिल्ली और भाड़ में जाए हमारा क्या मतलब है उससे अब सज्जन जो अब राजनीति बड़ी प्रिय विषय है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि वो भी पहले बहुत ही ये सब करता रहा होगा निश्चित रूप से देश के लिए, और ये सब सोचते रहे होंगे, बातें करते रहे होंगे, लेकिन इस समय जो उनकी स्थिति है वो जिसमें उनका राग जुड़ा हुआ है उनका चिंतन चल रहा है। और इसके तो हमारे वृंदावन के भक्त प्यारे लोग बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं गोपियों का, कि किस प्रकार जो है बोलते हैं कि गोपी जो है अपने मन से भगवान को निकालने ही लग गए अरे भैया क्यों तुम निकाल रही हो? बोले कि महाराज क्या करे, बड़ी मुश्किल हो गई, जब हम गाय दोहने जाए तो देखा कि वहां कृष्ण खड़ा है और वो कहता रहा कि मेरे मुंह में दो दो, तो मैं दुहाने लगी और सारा दूध जो है भूमि में ही देखा कि वहां तो नहीं है। फिर पानी भरने गए, अब मैंने देखा कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बहुत देर ऐसे ही चला गया, अब फिर जब मटका ही हमारे हाथ से छूट गया फूट गया तब मालूम पड़ा कि ये तो था नहीं। तो ऐसे कोई भी काम करे, अब मुसल से जो है वो धान कूट रहे हैं, अब उसी को पकड़ करके वो बैठ जाए, तो बाद में देखते हैं कि सब मेरे मन की ही रचना है, अर्थात उनके साथ में ही भगवान श्री कृष्ण है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बोले मेरा सारा काम काज खराब कर रहा है, इसलिए मैं इसको जो है बैठ करके किसी तरह दिल से निकाल दूं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है, हम लोग तो बड़े मुश्किल से दिल लगाना चाहते हैं, ये तो निकालना चाहती हैं। बोले ये क्या करती हो तुम, पागल हो? बोले पागल क्या है, हमारा सारा काम खराब हो रही है तो कहने का तात्पर्य ये है कि राग पक्ष को, हमारे चित्त के जो रागात्मक पक्ष हैं, वो ध्येय पदार्थ के साथ जुड़ना आवश्यक है। और कैसे जुड़ेंगे? तो भैया जब वो बहुत अपना और प्रिय मालूम पड़ेगा तब जुड़ेगा। तुलसी बाबा के शब्द हैं कि हमारा चित्त जो है ना वो बिखर गया है ना, उसका सारे दौर जो है अलग अलग हो गया, सबके ताग ममता बटोरी, सब में ये जो स्त्री हैं पुत्र हैं गृह हैं धन हैं ये सब परिवार हैं, इन सब में हमारे जो है ना ये सब ममता का, ये मेरे ये मेरे ये मेरे अपने ये प्रिय। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे सरसों होता है तो उसमें अपने डब्बे में या कपड़े में बांध के रखा होगा और वो हाथ से गिर गया तो सरसों के दाने पूरे कमरे में बिखर जाएगा। अब इन सारे दानों को इकट्ठा करना कठिन काम है कि नहीं? इसी प्रकार बोलते कि हमारा मन जो है वो सरसों की पुटली है, माने वो बोलते पुटली, तो वो जो है गिर गया और बिखर गया और कहां 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 ये जो है टूट गया है, स्प्लिट हो गया। तो सबके ताग ममता बटोरी, ये सारी ममताएं बटोरो, माने वहां वहां से ले आओ और उसको वड़ो, माने उसको इकट्ठा करो, फिर मेरे पैर में बांधो, मम पद बाधाएं, बड़ी डोरी है। तो ममता को ये भक्ति पक्ष हो गया। देखो ध्यान केवल ये यहां पर गीता जी में जो योग है ये एक ही साथ में योग है, भक्ति है, ज्ञान है, सब है एक साथ में। तो जब आप ध्यान लगाएं उनमें अपने प्रियता का भाव कैसे जगे और आपका चित्त कैसे द्रवित हो इसका भी प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे चित्त इनमें गल जाए। इसको बोलते हैं गलना, द्रवित होना। और देखो इसका एक उदाहरण देख लीजिए भागवत से, वृत्रासुर का प्रसंग है जहां पर उसके इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है और महाराज उसके हाथ कट गए हाँ? और ऐसे घनघोर परिस्थिति में वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं ना, बड़ी प्यारी प्रार्थना है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्स तरक्षुधारता प्रियं प्रियेव दुषितं विषन्ना तथारविन्दाक्ष दिद्रेक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव खगा, जिन पक्षियों के शावकों का अभी पर नहीं निकला है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, घोंसले में है, आपने देखा भी होगा मैं समझता हूं। अब वो जो है किस प्रकार से मां क्या करती हैं, वो जब बच्चे अंडे से फूट करके बाहर आते हैं ना तो मां बड़ी बिजी हो जाती है, वो फट से जाती हैं और कुछ ले आती है फिर उसको खिलाते फिर फट से जाती हैं। तो अब जब मां कहीं चली जाती हैं तो ये बच्चे जो हैं कभी कभी तो उनकी प्रतीक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो घोंसले से ऐसे झांकने लगते हैं कि मैंने मां आ रही है कि नहीं आ रही है। और कई बार तो हम देखते हैं कि अगर हम देखने जाए या कोई देखने जाए तो एकदम ऐसा डरती हैं और एकदम छुप जाते हैं, है ना। तो वो बेचारी इतना असहाय है, मां पर इतना डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। एक तो इधर से भूख भी लगी है, असुरक्षा भी है, मां आएंगी तो सुरक्षा मिलेगा, भोजन मिलेगा, और वो मां की रास्ता देख रहे हैं। ऐसे जैसे अजात पक्ष शावक, ऐसे हम आपके अजात पक्ष शावक हैं। मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है और मैं इस प्रकार से आपकी राह देख रहा हूं इस परिस्थिति में। तो ये भाव पक्ष को जोड़ना होता है, चाहे तो अपने आप को ऐसा छोटा नन्हा अजात पक्ष शावक समझो और परमात्मा को मां समझो, ऐसे मां के लिए प्रतीक्षा। दूसरा दृष्टांत क्या है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। छोटे बछड़े वो मां तो वहां पर भी है, सामने देख रहे हैं मां है वहां पर, लेकिन बछड़े को तो दूध पीने नहीं दिया जा रहा है, तो वो बछड़ा जो है बंधा हुआ वो निरंतर जो है वो रस्सी को यूं यूं करता है, कभी देखा होगा तो, वो कितने देर में जो है वो पहुंच जाए मां के पास में, और इधर उधर उसको जैसे रस्सी खोलो तो इधर उधर नहीं देखता है वो सीधे जाकर के स्तन में ही वो अपना मुंह लगाता है। तो स्तन्यम क्षुधार्ता है ना, क्योंकि भूख बहुत लगी है और इनको पता है कि मातृ स्तन्य के अलावा मेरे भूख मिटने वाली इस कष्ट से, तो ऐसे जो कष्ट जो दुख जो भूख हमको लगी है इसका निदान और किसी के पास नहीं है। ऐसे जैसे स्तन्य की ओर वो स्तन्य की प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे ही हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भूख से प्यास से हमारा प्राण निकलने लायक है, अब निकलेगा। और तीसरा जो है वो प्रियम, प्रियतम चला गया दुर्देश भूषितम, और उनके चिंतन में विरह में विषण्ण होकर के प्रिया बैठी हैं उत्कंठित। भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में ध्यान का उदाहरण देते हैं, ध्यायति प्रोषितनाथा भर्तृका, जिनके प्रिय बाहर चले गए हैं तो कैसा ध्यान करते, निरंतरम सोत्कंठम स्मरणम, निरंतर उत्कंठा के साथ कब आएंगे। तो हमारे चित्त में एक इस प्रकार की भाव उमड़े परमात्मा के लिए, ये आवश्यक है। तो इसलिए जब आप ध्यान लगाए तो भावनाओं को जुड़ने का प्रयत्न करें, और भावनाओं को जुड़ना जो है ये अभ्यास से होता है, हो सकता है। इसलिए तो भगवान के जो इतने सब भावों को और कथाएं सुनाई जाती हैं ये सब उसी के लिए हैं, चाहे शांत भाव हो, दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, और आपके जो हैं मधुर भाव हो, जिस भाव से भगवान आपको ज्यादा निकट मालूम पड़े उस भाव से आप इनके साथ अपने आप को जोड़ो। तो भाव पक्ष का पोषण और उसका जो है प्रयोग अपने ध्यान के क्षेत्र में होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, एक दिन हम लोग कुछ साधक मिलकर के ध्यान का अभ्यास कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भैया आज ऐसा करें श्वास के साथ आज प्रयोग करते हैं, तो कुछ प्राणायाम आदि करके फिर ये देखो श्वास को खाली ऑब्जर्व करते रहो, भीतर जा रहा है बाहर आ रहा है, और ये भीतर जाता है तो कहां से उसको फिल करना है, ये नाक के अग्रभाग से नहीं देखना, जब आपका वक्षस्थल जो है ना थोड़ा प्रसारित होता है फूलता है तो हवा भीतर जाता है, और फिर अपने आप भीतर से कुछ ऐसा सिकुड़ने लगता है तो हवा निकल जाती है, आप फेंक नहीं रहे हो ले नहीं रहे हो, वो स्वयं ये प्रक्रिया जो है हमारे जो लंग्स है फेफड़े हैं ना इसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो जो संवेदना है सेंसेशन है ये वक्षस्थल या तो नाभि तक, किसी किसी का नाभि में भी महसूस होता है। तो उस संवेदना के साथ इसको भीतर जाते हुए बाहर आते हुए देखिए। पहले तो इतना करो, अब जो है इसके साथ में भावना को जोड़ो। कैसे? श्वास अगर बंद हो जाए, ये प्राण का प्रवाह आना जाना, कई प्रकार से भावना जोड़ सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा? जीवन समाप्त। बंद होना तो जाने दो, अगर थोड़ी देर के लिए कुछ कष्ट होने लगे आने जाने में ना, तो तभी व्यक्ति इतना घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है उसका। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? बहुत व्यावहारिक बात कह रहा हूं। तो ये जो प्राण है या श्वास है, ये जो प्रक्रिया है, ये हमको जीवित रखा है कि नहीं? हमारा जीवन ये रक्षा कर रहे कि नहीं? तो जैसे समझ लो, भाव को कैसे जोड़ रहे, एकाएक हमको ऐसा फील हुआ जब हम ऐसे जोड़ रहे थे, अरे ये बंद हो जाए तो सब खत्म एक क्षण में। लेकिन बंद तो हो नहीं रहा है, चल रहा है। तो जैसे मां अपने छोटे नन्हे बच्चे को अपने गोद में रखा हो, अच्छा वो जैसे बच्चा यूं पड़ा है, अब वो चाहे उल्टा करके सुलाए चाहे पलटा करके सुलाए, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता, एकदम छोटा है, नन्हा है ना। तो ऐसे ही ये श्वास के बिना हम बिल्कुल कुछ करने में असमर्थ हैं। तो ये मैं तो एक छोटा सा नन्हा हूं, इस विराट जो प्राण सत्ता है, ये हमारी मां है, और देखो हमको कैसे जो है गोद में ले करके, जैसे मां ऐसा यूं यूं नहीं करती हैं, ऐसे जो है हमको ये निरंतर हमारी रक्षा के लिए वो काम कर रही है। और फिर अपने आप को पूरे मां के गोद में जैसे हैं ऐसे करके आप उनको सौंप दो। तो बड़ा दिव्य अनुभव होता है और बड़ी जो शांति मिलने लगती है, आप इस विराट मातृत्व से जुड़ने लगते हैं। माने परमात्मा है ना, वो नाना रूप में है, वो मां भी हैं, वो मालिक भी हैं, वो सब हैं। तो कहने का ये अर्थ था कि जब आप ध्यान करें तो अपने भावनाओं की तरफ भी देखें, खाली वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये भावना को जितना आप जगाएंगे उतना ही आपके ध्यान माने आपकी इंटीग्रिटी होगी, माने भाव भी उसके साथ जुड़ेगा, मन भी उसके साथ जुड़ेगा। और ये जो है, जैसे हम कुछ लोगों से तो हम प्रेम करते ही हैं, लेकिन परमात्मा से माने इस विराट से, इस विश्व से प्रेम करना हमको सीखना पड़ता है और सीखा जाता है। वो भी एक आर्ट है, कला है, एक दार्शनिक एरिक फ्रॉम, तो उनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक ही है द आर्ट ऑफ लविंग। वो मैंने काम कला से संबंधित नहीं है, प्रेम कला से संबंधित है, क्योंकि वो लव शब्द जरा ऐसे हो गए ना, तो द आर्ट ऑफ लविंग। प्रेम भैया आप ऐसा मत समझो कि आप प्रेम करना जानते हो, नहीं है ना। तो प्रेम के, एक तो प्रेम के बारे में हमारी धारणाएं भी बड़ी अस्पष्ट हैं और बहुत ही उत्पटन है और प्रेम करना जो है ऐसा मानते हैं कि प्रेम करना जो है सीखना नहीं पड़ता या सिखा नहीं जा सकता, अन्य सब चीज तो सीखी जा सकती है, प्रेम तो होता है तो ऐसा नहीं है, प्रेम भी सीखने की चीज है। तो देखो कैसे प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, इस विराट से प्रेम करें कैसे। तो पहले अपने जो सांसारिक प्रेम है उसी को ले लो, कैसे प्रेम होता है। तो प्रेम में क्या होता है, कोई सांसारिक प्रेम में एक आकार होता है, एक फिगर होता है, उसको बोलते प्रेम का विषय। और उस फिगर में आपको विशेष प्रकार के सुख जो और कोई नहीं दे सकते, इस प्रकार के एक सुख दिखता है, विशिष्ट सुख दिखता है। और फिर उसके साथ में आपका काम वृत्ति हो, स्नेह वृत्ति हो, कोई ना कोई एक वृत्ति विशिष्ट प्रकार के जो भाव दशा है वो जागृत होता है। जैसे छोटे बच्चे के लिए मां के दिल में कैसा होता है ना, हम तो देखते हैं बड़ी विचित्र है प्रकृति, ऐसे हम लोगों को सिखाती है। कल तक जो बच्ची जो मल मूत्र देख करके ऐसा वो करती थी, आज जब वो मां बन गई है पता नहीं उसके भीतर एकदम एकाएक सब बदलता है। अब उस छोटे बच्चे जो हैं उनका अपना ही टुकड़ा मालूम पड़ता है और उसके मल मूत्र उसको कुछ पता ही नहीं लगता है, घृणा ही नहीं होती है। क्या जो है मैजिक है हमारी इस प्रकृति माता धरती माता के पास या भगवान के पास में, एक सेकंड में बदलते हैं लोगों के भावों को। तो कैसे उसके साथ में हमारा वो जो काम है या स्नेह है या दया है, ऐसी वृत्तियां क्या करते हैं हमारे चित्त को, थोड़ा उस समय जब वो भाव उभरता है ना चित्त गलता है, उसके साथ चिपकता है, जिसके प्रति ये भाव होता है उसके साथ चिपकता है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में ये सब वर्णन किया कि चित्त द्रव्यम तु जतुवत स्वभावत कठिनात्मकम, हमारा चित्त जो है वो लाख के समान है, स्वभाव से कठिन है और तापक विषय के योग से वो गलता है। तापकैर विषयाद योगाद द्रवत्वम प्रतिपद्यते। तो हमारा चित्त जो है ना एक गलाना, गलाने की प्रक्रिया, असल में उसको भक्ति जो कहा जाती है, जो गलाना है ना। तो उनका कहना है कि जिस विषय का आप ध्यान कर रहे हो ना, तो उनके साथ या तो काम या स्नेह या वात्सल्य, ऐसे कोई तापक विषय आपके चित्त में उभरना चाहिए। और वो जब तापक जगेगा तो आपका चित्त गलेगा, जैसे संसार में होता है। और जब चित्त गल करके उसके आकार को पकड़ता है तो क्या होता है, वो आकार परमानेंट होता है, स्थायी हो जाता है। जिसके प्रति भी आपका चित्त गला किसी भी विषय तापक से, देखना कुछ देर तक वो आपके साथ रहते हैं, झट से नहीं भूलते उनको, देखा भूल गया ऐसा नहीं। तो वो आपके चित्त में एक जगह बना लेते हैं। तो जैसे कोई मेटल को मूर्ति रूप देना हो, भगवान का आकार देना हो, तो पहले उसको गलाया जाएगा, फिर उसको सांचे में ढाला जाएगा और फिर सांचे से अलग किया जाएगा, तब भी वो उसका आकार इसमें बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चित्त भी ये सब जो विषय है ना, ये सब सांचे हैं और हमारे चित्त गल गल करके उसके आकार अपने में लेते हैं। और महाराज गल करके जो वो आकार लेते हैं, तो चित्त की ये विशेषता है कि बाद में बहुत दिनों के बाद भी वो आकार वहां पर बैठा हुआ होता है। कहा कि जैसे आपने लाख को गला दिया और उसमें रंग मिला दिया, जैसे चूड़ी उड़ी बनाते हैं ना उसी से बनाते हैं, तो लाल पीला हरा जो, अब जो रंग मिला दिया जब वो कठिन भी हो जाएगा तो दिखेगा कैसे, और जब फिर गलेगा भी तब भी क्या होगा, वो रंग जो है जाएगा नहीं। तो इसलिए महाराज ऐसा रंग दो कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया है ना, मेरा कहा है। तो ये जो रंगना, भगवान के रंग में रंगना, तो ये भावों को जगा वहां पर ध्यान जब, और खास करके भैया अगर आकार हो भगवान का, माने साकार मूर्ति से अगर थोड़ा बहुत आपका प्रेम हो तो ये आसान होता है, लेकिन हम थोड़ा यहां निराकार की बात करेंगे ज्यादा, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। साकार से निराकार अपने आप, साकार जो है ना आपको वहीं पहुंचाएंगे जो उनका अपना वास्तविक स्वरूप में, इसलिए किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं, बल्कि साकार से शुरू करना यह आसान पड़ता है। तो इस पूरे विश्व सत्ता, इस विराट परमात्मा के साथ में हम अपने आप को कैसे जुड़े, तो भर्तृहरि महाराज ने एक बड़ी सुंदर भाव व्यक्त किया, उसको बोल करके मैं पूरा करता हूं। समय तो ऐसा निकल रहा है कि और बात इतनी ज्यादा करनी है ऐसा लगता है, कब भगवान की इच्छा है तो उन्होंने कहा ये सारी प्रकृति से हमने संग किया, संग बोलते हैं ना आसक्ति को, और संग माने साथ, ठीक है ना, मेरे संग चलो माने मेरे साथ साथ चलो। तो कहा कि ऐसे तो हम लोग संग से परेशान है ना, असंग बनो ना बोलते हैं ना, तो संग से हम परेशान हैं, माने भगवान में मन जाता नहीं है। तो ठीक है भैया, संग बढ़िया ढंग से कर लो। कैसे संग करें, तो ये है भर्तृहरि महाराज अंतिम प्रणाम कर रहे हैं ये सारे प्रकृति को, अंतिम प्रणाम लास्ट। मातर मे दिने तात मारुत सखे तेजस्वंधो जलम भ्रातर मते निबद्धेश भवताम अंत्य प्रणामांजलिम युष्मत संगवशोपजात सुकृत स्वारस्फुरा निर्मला ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लिए परे ब्रह्मणी। मातर मेदिनी, धरती से मां का संबंध जोड़ा उन्होंने, ये संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है भैया। मातर मेदिनी हे मां, तुमने हमारी मां क्या करती है, भरण पोषण सब करती है, खिलाती पिलाती है ना, तो ये कौन खिला पिला रही है तो कभी थैंक्स दिया कि नहीं इनको जो निरंतर हुए वो अपने अनाजों को पैदा करके हम बच्चों का भरण पोषण करती हैं, कभी जो कम से कम मदर्स डे में याद कर लेना तो मातर मेदिनी तात मारुत सखे, मारुत माने ये जो प्राण है वायु है ये मेरे पिता हैं, निरंतर रक्षा कर रहे हैं। देखो सखे तेजह, और तेज जो है वो सखा है, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो चाहे दीप हो, अगर सखा न हो तो हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा। बल्कि यहां से भी अगर तेज निकल जाए शरीर में से महाराज, तब तो राम नाम इनके बिना काम चलेगा नहीं। तो कभी इनके साथ में अपनी सख्यता ऐसा महसूस किया कि ये मेरे बड़े मित्र हैं, सख्य भाव। सुबंधो जलम, जल हमारे परम आत्मीय हैं, बंधु माने रिश्तेदार है ना, पानी का कितना गहरा संबंध है हमारे जीवन से। भात और व्योमा, और ये जो इतना बड़ा आकाश है ये मेरे बड़े भाई हैं, भात और व्योमा। तो ये जो विश्व प्रकृति है ये परमात्मा के ही पांच रूप है। परमात्मा पहले आकाश बने फिर ये सब बने ना, तो देखो इनके साथ में ममत्व का संबंध डेवलप हो। ये जो आधुनिक मनुष्य हैं इसके लिए बड़ा कठिन काम है, वो तो अपने शेल के भीतर इतना सिकुड़ रहा है, किसी से प्रेम करता ही नहीं है, रूटलेस हो गया, किसी से उसका कोई जड़ नहीं पकड़ता है। लेकिन साधक को जो है ना अपने जड़ को समझना है, आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपकी भावनात्मक रूप से ये रिकग्निशन बिल्कुल नहीं है, और जब तक ये नहीं होगा तो आपकी भाव की शुद्धि किधर से होगी। तो इस पूरे विश्व सत्ता के साथ इतने ममता के गहरे संबंध से जुड़िए, सब अपना लगे। निबद्धेश भवता अंत्य प्रणामांजलि, वो जब ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना समाधि ले रहे हैं हमेशा के लिए भर्तृहरि महाराज, उस समय की बात यह है, तो वो अंतिम प्रणाम मैं करता हूं। जुस्मत संग वशः, हमने आपका संग किया, जैसे सत्संग नहीं करते हैं भैया, सत्संगति से ही हमारा मन सत की ओर जाएगा, संग के बिना तो किधर जाएंगे, सुकुसंग से इधर चले जाएंगे, सत्संग से परमात्मा की ओर चलेंगे। तो अपना संग ठीक करो, नहीं तो मच्चित्त कैसे बनेंगे। भगवान में संग करना, भगवान का संग करना। तो युष्मत संग वश उपजात सुकृता, और आप लोगों का जो चरित्र है, आपकी जो प्रकृति है इतना महान है, अब सबको खिला पिला रहे हैं, सबके अपने हैं, सबको भरण पोषण कर रहे हैं। इनकी महानता आप देखिए, सबको अपना मानते हैं, एक एक प्रकृति के पदार्थ के चरित्र को अगर आप देखोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा, कितने महान है। तो ऐसे महापुरुषों का संग, आप जैसे महान सत्ताओं का संग मैंने किया। देखो प्रकृति का संग जो है आध्यात्म साधक के लिए बड़ी औषधि का काम करता है, वो ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है उनके माध्यम से। युष्मत संग वशो उपजात सुकृत, और जैसे सत्पुरुषों का संग करोगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, और ऐसे महान पुरुषों का संग करोगे, महान व्यक्तित्वों का, तो सुकृत पुण्यों का स्फार हुआ माने विस्फार हुआ, पुण्य संहार मुझे मिल गया। छोटा मोटा पुण्य नहीं, और उससे जो है मेरे चित्त के सारे पाप सारे मल सब धुल गए, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया मेरा। क्योंकि समस्त जो विकृत राग द्वेष आदि है ना, इस संग से एक विराट उदात्तता को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने जो राग द्वेष है इसको उदात्त बनाया जाता है, ऐसे सब विराट विश्व प्रकृति के साथ जुड़ करके, और इससे जो है निर्मल अद्वैत ज्ञान सब ब्रह्मरूप है, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। स्फारण निर्मल ज्ञानापास्त समस्त, और वो ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रकट हुआ तो जितने भी मोह और कालिमाएं थी, मोह अज्ञान था, वो समस्त अज्ञान का अपसारण हो गया, अपास्त नष्ट हो गया। समस्त मोह महिमा, मोह की जो महिमा थी, मोह का जो प्रभाव का साम्राज्य था, चित्त में जो अंधेरा था, वो सब नष्ट हो गया। अब मैं लिए परे ब्रह्मणी, और मैं उस पर ब्रह्म के साथ एक सदा के लिए, मैंने अपना ये जो छोटा बाहरी ईगो है इसको छोड़ करके मैं पर ब्रह्म रूप में ही अब अवस्थान करने जा रहा हूं। इसलिए आगे से न आपका संग कर पाएंगे और न ही आपको कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे, इसलिए मेरा अंतिम प्रणाम आप लोगों को स्वीकार हो। तो मत चित्ता, भगवान में अपने राग को, अपने भाव को जोड़ो, और मत परह में ये ज्ञान पक्ष, वो क्या है तो देखो कि आपके हृदय में किसको आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हो इस समय, सबसे ज्यादा महत्व। ये राग वृत्ति की बात नहीं है, ये महत्व बुद्धि की बात है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ किसको मान रहे हो, बड़े किसको मान रहे हो? तो परमात्मा यदि बड़े होंगे, परमात्मा को अगर बड़ा मानते हो, माने ऐसा आप सोचते हो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए उतना बड़ा स्थान नहीं है। टैगोर ने एक बात कहा कि देखो, जब घर बनाते हैं तो सबके लिए सब कैसा, कौन कहां रहेगा, कैसे रहेगा सब, फिर तो भगवान कहां रखना तो पड़ेगा। तो सबसे जो बेकार और सबसे जो कहीं ऐसी जगह है, वो उनके लिए भैया तू यहां रहे, क्योंकि जहां भी चाहे रह लेंगे। तो हम लोगों के ऐसे जो हम सोचते हैं कि हम भगवान को बड़े मानते हैं, वो तो हमारे बर्ताव से, हमारे भाव से पता लगेगा ना, किसके ऊपर आपका ज्यादा भरोसा है, किसके ऊपर विश्वास है। ये देखो भैया, पढ़ी पढ़ाई बात तो निकल जाता है ना संकट में। जब तोता ने राम नाम रटा, राम राम बोलते हैं सबको, लोग सोचा कि बड़ा भगत है, अब बिल्ली आकर के जब पकड़ लिया तो राम तो निकला नहीं, टें 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 करने लगे क्योंकि वो उसके भीतर का भाव है ना। तो हम लोगों की स्थिति ऐसा है महाराज, तो अपने जो निश्चय है हमारा, मान लो हम संकट में पड़ेंगे तो किसको किसको पुकारेंगे, कौन याद आता है झट से? अपने विश्वास को, अपने भरोसा को, अपने इसको भगवान ने आगे कहा आश्रय। हम लोग असल में किसका आश्रय में जी रहे हैं, आश्रय लिया कि नहीं लिया उनका, इसकी चर्चा कल करेंगे, आज तो बहुत टाइम हो रहा है भैया। ध्यान योगेन साम, ध्यान योगेन साम, ध्यान योगेन साम।